पृष्ठ संख्या 113। कैसे मंगलमय प्रभात की कल्पना थी और कैसी अंधेरी काल रात्रि आ गई है। एक दूसरे को देखने से डर लगता है। घर मसान हो गया है, अपने ही लोग भूत प्रेत बन गए हैं। पेड़ सूख गए हैं, लताएं कुम्हला गई हैं, नदियां और सरोवरों को देखने में भी दुस्साहस हो गया है। केवल इसीलिए कि जिसका ऐश्वर्य से अभिषेक हो रहा था वह निर्वासित हो गया। उत्कर्ष की ओर उन्मुख समष्टि का चैतन्य अपने ही घर से बाहर कर दिया गया। उत्कर्ष का मनुष्य भी ऊर्ध्वोन्मुख चेतना की यही कीमत सनातन काल से अदा की जा रही है। इसीलिए जब कीमत अदा कर ही दी गई तो उत्कर्ष काम से कम सुरक्षित रहे, यह चिंता स्वाभाविक हो जाती है। राम भींगे तो भींगे, राम के उत्कर्ष की कल्पना न भींगे। वह हर बारिश में हर दुर्दिन में सुरक्षित रहे। नर के रूप में लीला करने वाले नारायण निर्वासन की व्यवस्था झेलें, पर नर रूप में उनकी ईश्वरता का बोध दमकता रहे कि पानी बूंदों की झालर में उसकी दीप्ति छिपने न पाए। उस नारायण की सुख सेज बने अनंत के अवतार लक्ष्मण भले ही भींगते रहें, उनका दुपट्टा उनका अहर्निश जागर न भींगे। शेषी नारायण के ऐश्वर्य का गौरव अनंत शेष के जागर संकल्प से ही सुरक्षित हो सकेगा, और इन दोनों का गौरव जगत जननी अद्याशक्ति के अखंड सौभाग्य सीमांत सिंदूर से रक्षित हो सकेगा। उस शक्ति का एक निष्ठ प्रेम पाकर राम का मुकुट है, क्योंकि राम का निर्वासन वस्तुतः सीता का दुहरा निर्वासन है। राम तो लौटकर राजा होते, पर रानी होते ही सीता राज राम द्वारा वन में निर्वासित कर दी जाती हैं। राम के साथ लक्ष्मण हैं, सीता हैं। सीता वन्य पशुओं से घिरी हुई विजन में सोचती हैं, प्रवश की पीड़ा हो रही है, कौन इस बेला में सहारा देगा, कौन प्रसव के समय प्रकाश दिखलाएगा, कौन मुझे संभालेगा, कौन जन्म के गीत गाएगा। कोई गीत नहीं गाता। सीता जंगल की सूखी लकड़ी बीनती हैं, जलाकर अंजोर करती हैं और जुड़वा बच्चों का मुंह निहारती हैं। दूध की तरह अपमान की ज्वाला में चित्त कूद पड़ने के लिए उफनता है, और बच्चों की प्यारी और मासूम सूरत देखते ही उस पर पानी के छींटे पड़ जाते हैं, उफान दब जाता है। इस पर निर्वासन में भी सीता का सौभाग्य अखंडित है। वह राम के मुकुट को तब भी प्रमाणित करता है। मुकुटधारी राम को निर्वासन से भी बड़ी व्यथा देता है, और एक बार और अयोध्या जंगल बन जाती है, स्नेह की रसधार रेत बन जाती है, सब कुछ उलट पुलट जाता है। भवभूति के शब्दों में पहचान की बस एक निशानी बची रहती है। दूर ऊंचे खड़े तटस्थ पहाड़, राजमुकुट से जड़े हीरों की चमक के सैकड़ों शिखर एकदम कठोर तीखे और निर्मम। पुरा यत्र श्रोतः पुलीन मधुना तत्र सरिताम पियर्षम यतो धन विरल भाव क्षितिरुहाम वहो कालाद दुष्टम हिय परमीव मन्यते वनमिदम निवेशम शैलानाम तदीतमीत बुद्धि धृणयति। राम का मुकुट इतना भारी हो उठता है कि राम उस बोझ से कराह उठते हैं, और इस वेदना की चित्कार में सीता के माथे का सिंदूर और दमक उठता है, सीता का वर्चस्व और प्रखर हो उठता है। कुर्सी पर पड़े पड़े यह सब सोचते सोचते 4 बजने को आया। इतने में दरवाजे पर हल्की सी दस्तक पड़ी। चिरंजीवी निचली मंजिल से ऊपर नहीं चढ़े। सहमी हुई कृष्णा मेरी मेहमान लड़की बोली, दरवाजा खोलिए। आंखों में इतनी कातरता कि कुछ कहते नहीं बना, सिर्फ इतना कहा कि तुम लोग को इसका अंदाजा होगा कि हम कितने परेशान हैं। भोजन दूध धरा रह गया, किसी ने भी छुआ नहीं। मुंह ढककर सोने का बहाना शुरू हुआ। मैं भी स्वस्ति की सांस लेकर बिस्तर पर पड़ा, पर अर्धचेतन अवस्था में फिर जहां खोया हुआ था वहीं लौट आया। अपने लड़के घर लौट आए, बारिश से नहीं संगीत से भींग कर। मेरी दादी नानी के गीतों के राम लखन और सीता अभी भी वन वन भींग रहे हैं। तेज बारिश में पेड़ की छाया और दुखद होती जा रही है। पेड़ के हर पत्ती से टप टप बूंदे पड़ने लगती हैं। तने पर टीके तो उसकी तन हर नस नस से अप्लावित होकर पीठ गलाने लगती है। जाने कब से मेरे राम भीग रहे हैं और बादल हैं कि मूसलाधार ढरकाए चले जा रहे हैं। इतने में मन में एक चोर धीरे से फुसफुसाता है, राम तुम्हारे कब से हुए? तुम जिसकी बुनाहट पहचान में नहीं आती, जिसके व्यक्तित्व के ताने बाने तार तार होकर अलग हो रहे हैं, तुम्हारे कहे जाने वाली कोई हो भी सकते हैं कि वह तुम कह रहे हो मेरे राम? और चोर की बात सच लगती है, मन कितना बटा हुआ है, मनचाही और अनचाही दोनों तरह की हजार चीजों में दूसरे कुछ पतियाए भी, पर अपने ही भीतर परितीति नहीं होती कि मैं किसी का हूँ या कोई मेरा है। पर दूसरी ओर यह भी सोचता हूँ कि क्या बार बार विचित्र से अनमनेपन में अकारण चिंता किसी के लिए होती है? वह चिंता क्या पराए के लिए होती है? वह क्या कुछ भी अपना नहीं? फिर इस अनमनेपन में ही क्या राम अपनाने के लिए हाथ नहीं बढ़ाते आए हैं? क्या कुछ न कुछ होना और कुछ न बनना ही अपने अपनाने की उनकी बड़ी हुई शर्त नहीं है? तार टूट जाता है, मेरे राम का मुकुट भींग रहा है, यह भीतर से कहाँ पाऊँ? अपने उदासी में ऐसा चिपकाव, अपने सकरे से दर्द से ऐसा रिश्ता, राम को अपना कहने के लिए केवल उनके लिए भरा हुआ हृदय कहाँ पाऊँ? मैं शब्दों के घने जंगलों में हीरा गया हूँ, जानता हूँ इन्हीं जंगलों के आसपास किसी टोकरी पर राम की पर्ण कुटी है, पर इन उलझन वाले शब्दों के अलावा मेरे पास कोई और राह नहीं। शायद सामने उपस्थित अपने ही मनोराज्य के युवराज, अपने बचे खुचे स्नेह के पात्र, अपने भविष्य के संकट की चिंता में राम के निर्वासन का जो ध्यान आता है, उनसे भी अधिक एक बिजली से जगमगाते शहर में एक पढ़ी लिखी चंद दिनों की मेहमान लड़की के एक रात कुछ देर से लौटने पर अकारण चिंता हो जाती है। उसमें सीता का ख्याल आता है, वह राम के मुकुट या सीता के सिंदूर के भींगने की आशंका से जोड़े न जोड़े आज की दरिद्र अर्थहीन उदासी को कुछ ऐसा अर्थ नहीं दे देता जिससे जिंदगी ऊब से कुछ उबर सके। और इतने में पूरब से हल्की उजास आती है और शहर के सारे शोर भरे बियबान में चक्की के स्वर के साथ उड़ती उतराती जंतसार गति हल्की सी सिहरन पैदा कर जाती है, मेरे राम के भीजे मुकुटवा। और अमचूर की तरह विश्वविद्यालयी जीवन की नीरसता में सूखा मन कुछ जरूर ऊपरी सतह पर ही सही भींगता नहीं तो कुछ नम तो जरूर हो जाता है। और महीनों की उमड़ी घुमड़ी उदासी बरसने बरसने को आ जाती है, बरस न पाए यह अलग बात है, कुछ भीतर भाप हो तब न बरसे, पर बरसने का यह भाव जिस ओर से आ रहा है उधर राह होनी चाहिए। इतनी असंख्य कौशल्याओं के कंठ में बसी हुई जो एक अरूप ध्वनिमयी कौशल्या है, अपनी सृष्टि के संकट में उसकी सतत उत्कर्ष के लिए आकुल, उस कौशल्या की ओर, उस मानवीय संवेदना की ओर कहीं राह है घास के नीचे दबी हुई, पर उस घास की महिमा अपरंपार है। उसे तो आज वन्य पशुओं का राजकीय संचरित क्षेत्र बनाया जा रहा है, नीचे ढकी हुई राह तो सैलानियों के घूमने के लिए, वन्य पशुओं के प्रदर्शन के लिए, फोटो खींचने वालों की चमकती छवि यात्राओं के लिए बहुत ही रमणीक स्थली बनाई जा रही है। उस राह पर तुलसी और उनके मानस के नाम पर बड़े बड़े तमाशे होंगे, फुलझड़ियाँ दगेंगी, सैर सपाटे होंगे, पर वह राह ढकी ही रह जाएगी, केवल चक्की का स्वर, श्रम का स्वर ढलती राह में, भींगती राह में अनसोए वात्सल्य का स्वर तलाशता रहेगा। किस ओर राम मुड़े होंगे बारिश से बचने के लिए, किस ओर, किस ओर? बता दो सखी।